करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो
के बीच में बाबा की बगिया के रूहे गुलाब, दिल तख्त नशीन, ब्राह्मण परिवार के प्रिय मास्टर मुरलीधर आदरणीय राजू भाई जी पधारे हैं। आपका हम एक हाथ की ताली से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आपका लौकिक जन्म यूपी में कानपुर के पास एक छोटे गांव में आध्यात्मिक परिवार में हुआ। सन 1960 में संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के कर कमलों द्वारा आपके लौकिक घर में छोटी गीता पाठशाला का शुभारंभ हुआ। उस आध्यात्मिक वातावरण में आपका बचपन बीता, वहां से ही आपको योगी जीवन जीने का संकल्प आया। 71 में आप पहली बार माउंट आबू में आए। मुख्यालय के दिव्य एवं शक्तिशाली वातावरण को देखकर आपने अपनी पूरी जीवन महायज्ञ में समर्पित कर सेवाएं देने का निर्णय ले लिया। आप लौकिक पढ़ाई पूरी कर 72 से माउंट आबू में समर्पित रूप से अपनी अथक सेवाएं दे रहे हैं। 76 से आप परमात्म महावाक्य मुरली सिंधी से हिंदी में अनुवाद करके सभी सेवा केंद्रों पर भिजवाने की सेवाएं दे रहे हैं। परमात्मा पिता से अव्यक्त रूप में आपको दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। इस वरदान के प्रमाण अपनी एकाग्र और कुशल बुद्धि द्वारा निमित बड़ी दादियों की प्रेरणाओं द्वारा ईश्वरीय विद्यार्थियों के पुरुषार्थ को सरल बनाने के लिए मुरली में उसका सार वरदान तथा स्लोगन विशेष पॉइंट्स हाईलाइट करने की विशेष सेवाएं आप ही देते हो। मुख्यालय से जो प्रति मास स्व उन्नति हेतु मासिक पत्र पुष्प निकलता है जिसमें विशेष अव्यक्त इशारे परमात्म प्रेरणाएं दादी जी की प्रेरणाएं व क्लासेस आदि होती है उन्हें आप ही प्रकाशित करते हैं। साथ साथ मुख्यालय में दादी जी के पास आने वाले पत्रों के जवाब देने पत्र व्यवहार का कार्य भी आप संभालते हो। अव्यक्त बाप दादा जब साकार वतन में दादी हृदय मोहिनी जी के तन में पधार कर महावाक्य उच्चारण करते थे तब आप उन्हें सुनते हुए उसी समय टाइप करके तत्काल विश्व के कोने कोने में भेजने की सेवा के निमित्त भी आप ही बने। आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की ग्राम विकास प्रभाव के मुख्यालय संयोजक हैं। आपके निर्देशन में शाश्वत योगिक खेती प्रोजेक्ट देश विदेश में बहुत फास्ट गति से फैल रहा है। गांव दत्तक योजना के भी आप प्रेरणा स्रोत हैं। विश्व के चहु दिशाओं में भ्रमण करते हुए यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर मलेशिया नेपाल अफ्रीका तथा रूस आदि देशों में भी अनेक विश्व स्तरीय कार्यक्रमों में आपने भाग लिया है। सतत अध्ययन के कारण आपकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान का खजाना भरपूर है और आपने योग की गहन अनुभूतियां भी की है। अपने इन्हीं अनुभव रत्नों के साथ आप हमें स्पष्ट करेंगे पुण्य का खाता जमा करने की विधि। आदरणीय भाई जी।
ओम शांति ओम शांति। मीठे बाबा की इस तपोभूमि चरित्र भूमि कर्म भूमि में आप सब इतनी दूर से योग तपस्या करने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ बाबा के इस घर में बहुत सहज योगी जीवन का अनुभव करते होंगे। हर स्थान पर जहाँ भी जाएंगे बाबा के चरित्र याद आएंगे। बाबा यहाँ बैठते थे, यहाँ खेलते थे, यहाँ बच्चों से मिलते थे, यहाँ विश्राम करते थे, यहाँ महावाक्य उच्चारण करते थे। साकार बाबा ने इस कर्म भूमि पर रहकर पूरे विश्व की आत्माओं का आह्वान किया है। इसलिए पांडव भवन की भट्टी का बहुत क्रेज रहता है, बहुत डिमांड है। तो आप सबको ये चांस मिला, इतनी दूर से आप आए, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी अनुभूतियाँ कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? अच्छा लग रहा है ना? सब खुश है, संतुष्ट है? मीठे बाबा ने हम सबको समय प्रमाण 3 खाते जमा करने के इशारे दिए हैं। जब तीनों खाते फुल होंगे तब हम संपन्न संपूर्ण कहलाएंगे। इसलिए सबसे पहला खाता है बहुत गुप्त पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना। और पुरुषार्थ ऐसा दिखावे वाला नहीं है, बहुत गुप्त पुरुषार्थ है। मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य आत्मा हूँ, इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ, मैं अलग हूं, इस शरीर अलग है। इस अभ्यास से जितना हम स्वराज्य अधिकारी बनते जाते, कर्मेंद्रिय जीत बन जाते। पहले कर्मेंद्रियों पर जीत होती, फिर कर्मेंद्रियों से जो पाप कर्म विकर्म होते हैं उस विकर्मों पर जीत होती, विकर्मों पर जीत होती ही माया को हम जीत लेते, प्रकृति को जीत लेते, कर्मातीत बन जाते। इसलिए बहुत गुप्त पुरुषार्थ मैं समझता हूँ, बाबा के बच्चे जिस दिन बने पहला पाठ मिला आप कौन है, महामंत्र मिला बी योगी बी होली, पवित्र बनो योगी बनो। संगम युग पर ये पवित्रता एक बहुत बड़ा जीवदान है, और जो आत्माएं जितना मन वचन कर्म से पवित्र बनती हैं और दूसरी आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, उनका पुण्य का खाता बहुत जमा होता जाता है। सबसे बड़ा पुण्य है इस नरक में पतित सृष्टि में पतित आत्माओं को सत्य मार्ग दिखा करके, ज्ञान नेत्र दे करके उन्हें पावन बनाना। तो पहले गुप्त पुरुषार्थ हम कर रहे हैं आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का, आत्म अभिमानी बनने का। और जब आत्म अभिमानी स्थिति बन जाती है, ते अभिमान पर विजय होती जाती है, तो पहले हम खुद पवित्र योगी जीवन का अनुभव करते हैं। जब तक कोई देहभान देह अभिमान देह अहंकार देह के साथ कनेक्टेड है, तीनों शब्द शरीर मिला, आत्मा शरीर के साथ पार्ट बजा रही है, नेचुरल भान है, मेल है फीमेल है, इस भान को सहज मिटाया नहीं जाता। नाम भी अगर कोई शरीर का नाम भी कोई लेता है तो फट से ध्यान चला जाता है, कौन पुकार रहा है, कौन बुला रहा है, ये भान है नेचुरल। अभिमान आ गया जब वो कर्म क्षेत्र पर आया, कुछ भी काम किया तो उसका थोड़ा थोड़ा अभिमान आता गया, नाम का पद का पोजीशन का धन का संबंधों का कई प्रकार का अभिमान आ गया। और अभिमान जब बड़े रूप में बढ़ता जाता है तो अहंकार का रूप ले लेता है। लेकिन योगी वो है जिसने अहंकार को मारा। हमारे ब्रह्मा बाबा ने तीन ही बातों का पुरुषार्थ करके, गुप्त पुरुषार्थ करके अपनी संपन्नता को प्राप्त कर लिया। पहला पुरुषार्थ रखा निराकारी स्थिति में रहने का, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, ये सब आत्माएं पाठ बजा रही हैं। जितना हम आत्मविमानी स्थिति का अभ्यास करते उतना इस शरीर के भान से न्यारे होते जाते, नेचुरल देही अभिमानी स्थिति बन जाए। ब्रह्मा बाबा ने इसी अभ्यास से अपनी इंद्रियों पर जीत पाई, कर्म इंद्रिय जीत बन करके वो निर्विकारी बने। निराकारी स्थिति ने उनकी स्थिति निर्विकारी बना दी, अंग अंग शीतल हो गए, सब प्रकार की उत्तेजनाएं समाप्त हो गई। और निर्विकारी स्थिति का भी कहीं अभिमान ना जाए, मैं निर्विकारी हूं, उसके बाद कहा बच्चे निरहंकारी, जरा भी किसी चीज का अहंकार नहीं। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति बनाई, हमारी दादियों ने ऐसी स्थिति बनाई है, बिल्कुल नम्रचित निरहंकारी, जरा भी कहीं अंश मात्र उन्हें अहंकार टच नहीं किया, मैं बड़ी हूँ, मैं हेड हूँ, मैं संस्था की मुखिया हूँ, संचालिका हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। निमित्तपन के भाव ने उन्हें निर्माण चित बना दिया, निर्माणता ने उनकी वाणी को निर्मल कर दिया। वाणी में जरा भी जोश नहीं, बड़ी मधुर और सरल वाणी का प्रयोग किया। बहुत गुप्त ये पुरुषार्थ है पन्नी का खाता जमा करने का, सुख देना सुख लेना, हर आत्मा की विशेषताओं को देखना, उन्हें आगे बढ़ाना, गिरे हुए को आगे बढ़ाना। गिरे हुए को आजकल क्या करते हैं, कहीं तो कोई की कमी कमजोरी को देखते हैं तो और ही गिराने के लिए उनका नाम रोशन कर देते, बदनाम कर देते, इधर उधर उनकी बातों को फैला देते हैं। जैसे कोई गिर रहा हो और ऊपर से आप ठोकर और धक्का लगा दो। लेकिन हमारे बाबा ने, हमारी दादियों ने उस गिरे हुए को उठाया, अपकारियों पर भी उपकार किया। ये अपकारी है, ये ग्लानी करने वाला है, उसको उस दृष्टि से नहीं देखा। बच्चे तो निर्दोष है, ये परवश है, ये पहचानता नहीं है, इसलिए ऐसे कर रहा है। ये जो परोपकार है ये बहुत बड़ा पुण्य है। तो पहला गुप्त पुरुषार्थ जितना हमने आत्माभिमानी स्थिति का किया, उतना दूसरा पुरुषार्थ शुरू हुआ, उसकी खाता जमा होने लगा, वो था दुआओं का खाता। और जिस आत्मा के पास दुआओं का स्टॉक है, चेक करना कितनी आत्माएं मुझे दुआ दे रही हैं, कोई भी भूल चूक से भी बद्दुआ तो नहीं देता, ये कैसे हैं, कहां से आ गए, कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं, मनमत पर चलते हैं, परमत पर चलते हैं, डिसर्विस करते हैं, विघ्न रूप बनते हैं, तुम्हें सभी की बद्दुआएं मिल जाती हैं। और सबसे श्रेष्ठ और सहज पुरुषार्थ संगम पर दुआएं लेना, दुआएं देना। हम सबको इस ब्राह्मण जीवन में किसी भी प्रकार के पेपर सहज पार करने की शक्ति तब प्राप्त होती है जब हमारे पास दुआओं का स्टॉक होता है। हमारे बड़ों ने, हमारी दादियों ने दुआओं को जमा किया, इतना सबको प्यार दिया, पालना दी, उनके अवगुणों को भी समाया, विस्तार नहीं किया, फैलाया नहीं। ऐसी दृष्टि, ऐसा स्नेह, ऐसी परोपकार की भावना, सुख देने की भावना ने उनके दुआओं का स्टॉक फुल कर दिया। अब फिर कोई भी पेपर आया, पेपर तो सबके सामने आते हैं, क्योंकि 63 जन्म देहमान के कारण कोई न कोई भूल हुई है, पाप हुए हैं, किसी न किसी को परेशान किया है, दुख दिया है। हिसाब किताब चुक तो करने का अंतिम समय है, क्योंकि जो भी खाते बनाए हैं वो साथ लेके वापस नहीं जाएंगे। जब घर जाने का समय है तो बाबा कहता है, बच्चे बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करो कौन कौन से ऐसे खाते हैं जो हमें धर्मराज की पुरी में सिर झुकाना पड़ेगा। क्या हमने योग बल से या कुछ भोग करके, दुआओं का स्टॉक जमा करके उन खातों को चुकतू कर लिया? खाते चुकतू हो रहे हैं या नया खाता बन रहा है, उसकी निशानी क्या होगी? पुराने अगर कोई गलत काम हुए हैं, विकर्म हुए हैं, हम योग बल से या कोई भोग करके उनको चुकतो कर दिया, खलास कर दिया, तो उसकी निशानी क्या होगी? बहुत सहज योगी जीवन, सहज योगी। बाबा ने जो सहज योग सिखाया उसमें जरा भी मेहनत नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में कहीं मेहनत या मुश्किल का अनुभव होता है, ये सहज मार्ग कहीं सहन वाला मार्ग अनुभव होता है, तो ये बोझ है, हल्कापन नहीं है, चुप तो नहीं हो रहा है। जैसे कोई के ऊपर कर्ज होता है, कर्ज अगर वो चुका दिया जाए तो कितना खुशी हल्केपन का अनुभव होता है, जैसे बोझ उतर गया। तो जब हम बाबा को याद करते हैं, बहुत श्रेष्ठ कर्म कर लेते हैं, सुख देते हैं अनेकों को, तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे पिछले किए हुए पाप कर्म चुक्त हो गए। अगर नया कहीं क्रिएट हो गया, बन गया, तो भारीपन, योग नहीं लगेगा। बैठेंगे योग में, दो मिनट में सो जाएंगे, योग ही नहीं लगेगा, नींद आ जाएगी, या नींद फिट जाएगी या नींद आ जाएगी। चेक करना, जितने हमारे भी कर्म, पाप कर्म नष्ट हो रहे, खत्म हो रहे हैं, आत्मा बहुत लाइट, खुश नसीब, खुशनुमा अनुभव करेगी। जैसे उड़ रही है, पैर जमीन पर नहीं है, ऐसा हल्कापन, ऐसी खुशी, ऐसा नशा, ये बताता है कि आत्मा के पास खूब धुआएं हैं। हम लोगों ने यज्ञ में और कोई पुरुषार्थ ज्यादा नहीं किया, मेहनत वाला नहीं किया। कैसे नहीं, हम 1 बजे 2 बजे उठ के एकांत में बैठ गए हों, तपस्या की हो, ये किया, सेवाओं में रह करके बाबा के यज्ञ की जो सेवाएं मिली, छोटी और बड़ी सेवाएं नहीं है, बाबा के यज्ञ की हर सेवा श्रेष्ठ है, महान है। डिमांड नहीं किया, लेकिन जो सेवा सामने दी बड़ों ने, कहा ये करना है, हाँ जी करना। कितना बड़ा छोटा सा यज्ञ था। जो पुराने हैं शायद जानते हैं, हमारा ये मधुबन, जब हम आए हैं 71 में, ये हिस्ट्री यहाँ जहाँ बैठे नहीं था, ये तो 74 में बना। सिर्फ वो हिस्ट्री हाल था, किचन भंडारा भी नहीं था, विशाल भवन नहीं था, ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, इंद्रप्रस्थ भी बन रहा था उस समय। बाहर के तो स्थान कोई थे ही नहीं, यही पांडव भवन छोटा सा था, और इसमें कोई साइंस के साधन नहीं थे। धोबी घाट वैसे, धोबी जैसे पाटेपट करते हैं वैसा होता था, झाड़ू पोछा के लिए कोई नौकर नहीं थे, मजदूर नहीं थे, सब हम लोग समर्पित भाई करते थे, हर घर की सफाई करना, पानी एक जगह गर्म करके सारे कमरों में पहुंचाते, सुबह सुबह अमृत वेले बाल्टियां भर भर करके सबके कमरों में पहुंचाना, और रोटी भोजन जो बनता था वो आपके ही धनवाद से कोयला आता था। पूरी ट्रेन एक बार कोयला आया, एक कहानी सुनाता हूं आपको। हमारे पास दो भाई थे जो रेलवे से रिटायर हुए थे, ट्रेन चलाते थे कोयले की, कोयले वाली ट्रेन उस समय थी ना पहले, तो वो ड्राइवर थे, उसके कोयला डालना, आग जल गर्म करना, भाप बना के ट्रेन चलती थी। तो दोनों बाबा के बच्चे बहुत पक्के थे, एक थे खन्ना जी और एक थे गुरमुख दादा, ये अम्बाला के थे सब, हरियाणा के। जब वो वहां से रिटायर हुए तो दादी को बोला, दादी हमें मधुबन में सेवा करनी है। भाई कौन सी सेवा करोगे? हम कोयला छानेंगे और कोयले के लड्डू बनाएंगे बड़े बड़े, और उसी से ही बॉयलर गर्म होगा, उसी से भोजन बनेगा, उसी से ये होगा, और कोयला भी हम खुद ले आएंगे, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हमको पता है कहाँ सस्ता मिलता है, कहाँ अच्छा मिलता है। तो एक बार वो धनवास से एक पूरी ट्रेन भर करके ले आए, पूरी ट्रेन मालगाड़ी है ना, उसे फुल बोगिया भर के ले आए, दादियों को नहीं बताया, लेकिन वहां से कोयले की ट्रेन लेके आ गए। और वो दिन थे होली के, जब ट्रेन आके आबू रोड में खड़ी हुई, तो वहां से बार बार नोटिस आए कि आप अपनी ट्रेन खाली कराओ, एक दिन दो दिन में खाली करो नहीं तो इतनी पेनल्टी लगेगी। और उस समय पैसा तो यज्ञ में इतना था ही नहीं जो पेनल्टी दी जाए। और दादी जी बड़े उमंग उत्साह वाली थी, दादी प्रकाशमणि जी, तो सवेरे सवेरे क्लास में आई और एक कहानी शुरू किया सुनाना, नशा चढ़ाया कि एक पवन पूत था। कौन था पवन पूत? हनुमान। एक पवन पूत था, जब लक्ष्मण को थोड़ा संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी तो वो संजीवनी बूटी कहाँ से लेने चला गया, लंका से उड़ा और पहुंचा जाके हिमालय पर, और देखा ये तो सब संजीवनी बूटी एक जैसी है, तो उसने सोचा कौन सी बूटी ले जाऊं, क्योंकि माया ने अपना रूप दिखा दिया, वहां सब संजीवनी एक जैसी बूटियां कर दी। तो उसने कहा पता नहीं कोई नकली चली जाए कहीं, पहुंचना रातों रात है वापस। तो उसने पूरा पहाड़ ही उठा लिया, और पहाड़ उठा करके अपनी उसी रफ्तार से उड़ा और समय के पहले लंका पहुंच गया। एक नाइट में इतनी बड़ी यात्रा कर ली और इतना बड़ा पहाड़ उठा के ले गया। एक छोटी सी ट्रेन में कोयला आया है और हमारे पास इतने पवन पूत बैठे हुए हैं, कुमार हैं, ब्रह्मचारी हैं, हनुमान हैं, अरे चलो चलो हम सब खाली करके आते हैं। तो दादी का उमंग दिलाना, नशा चढ़ाया सबको, और उस समय हमारे पास मधुबन में एक ही ट्रक था, एक ही ट्रक ड्राइवर भाई था, लेकिन इतना नशा चढ़ाया जो सब भाई तैयार हो गए, कोई कोई थोड़ा नीचे ऊपर किए, लेकिन सब चल दिए, दादी कह रही है चलो हम कोयला खाली करेंगे, और सुबह से शाम तक सारी ट्रेन खाली कर दिया। और खाली करते गए ट्रेन ट्रक में चढ़ाते गए, और कोई तो स्थान था ही नहीं शांति वन ये कोई भी, तो यहाँ पांडव वन में इसका स्टॉक कर दिया लेकर के सब आ गए। सुबह से शाम तक खूब मेहनत की, लेकिन शकल कैसी हो गई, सब ऐसे लगे कहाँ के आगे पहचान में नहीं आए, काले कपड़े, चेहरा काला काला एकदम भूत जैसे। तो जब दादी ने देखा कि अरे हमारे पांडव ने इतनी मेहनत की है, तो उनको बहुत प्यार आता था, तो उन्होंने एक एक चक्की साबुन दिया, जाओ अभी अभी जाओ सब स्नान करके आओ, सब बदल के आओ कपड़े, जाओ तैयार होकर के आओ, फिर स्पेशल एक प्रोग्राम करेंगे। क्या स्पेशल प्रोग्राम करेंगे? बोला आप सब तैयार होकर के आओ, फिर बाबा के साथ पिकनिक करेंगे। बाबा को बुलाते हैं, दादी को रिटर्न देना बहुत आसान था, मेहनत कराई, लेकिन फिर बाबा को बुलाया, अव्यक्त बाबा को, गुलजार दादी को बिठाया कि सब पांडवों ने बहुत मेहनत की है, आज बाबा इनसे पिकनिक करे साथ में। तो बाबा आ गए, ये हाल बन गया था यहाँ ही। अब बाबा जब आए तो बाबा ने तो अपनी शिक्षाएं देना शुरू कर दी, प्यार प्रेम की बाद की बात, कहा आज जब बच्ची ने सवेरे सवेरे सब बच्चों को उमंग दिलाया, तो बाबा वतन से देख रहा था तीन प्रकार के बच्चे थे। एक बच्चे थे जो दादी के हाँ में हाँ मिला रहे थे, चलो अभी अभी चलते हैं, बहुत नशा खुशी चढ़ा और चल दिए तैयार होकर के। दूसरे सोचते थे मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे तो खांसी होगी, जुकाम होगा, सांस फूलेगी, ये धंधा अपना नहीं है। तीसरे जो थे ना वो दूसरों को भी कह रहे थे पता नहीं दादी को क्या हो जाता है, क्या जरूरत है, दो चार दिन में कितनी पेनल्टी लग जाएगी, अपने आप मजदूर आएंगे तो खाली हो जाएगा। ना खुद में उमंग था, और जिनमें था उनके उमंग को भी कम कर रहे थे। बाबा सब देख रहा था। बाबा आज बच्चों को एक राय देते हैं, कोई भी कार्य है अगर कर सकते हो तो बड़े उमंग उत्साह से करो, और जो कर रहे हैं उनको और उमंग दिला दो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो नहीं करो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो करने वाले हैं अगर आपने उसको दो आना भी उमंग दिला दिया तो आप भी शेयर होल्डर बन जाएंगे। इसलिए पुण्य का काम है किसी के उमंग उत्साह को बढ़ा देना। हमारे अंदर नहीं है, मान लो हमारी शक्ति नहीं है, हमारी तबीयत इतनी नहीं काम करती है, हमारे पास धन भी इतना नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरे जो करने वाले हैं उनके उमंग को भी डाउन कर देना, जो कर रहा है उसको कहना क्या जरूरत है, यहाँ तो बहुत पैसे वाले हैं, यहाँ तो बहुत लोग करने वाले हैं, हमने नहीं किया तो क्या हो गया। और बाबा मुस्कराता है, अच्छा ठीक है। इसलिए सब ध्यान देना, जो कर सकते हो, इस संगम युग है पुण्य की पूंजी, पुण्य का खाता जमा करने की, जितना करना चाहो अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये स्लोगन बाबा का पक्का था साकार में, अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए जो कुछ श्रेष्ठ कर्म, जो कुछ पुण्य कर्म करना है, जो शक्ति है करो। और अगर मान लो कम है, हमारे पास इतना है ही नहीं, और दूसरा कोई करना चाहता है, तो उसको और हिम्मत दिलाओ, बहुत अच्छा है, इससे बहुत ऊंचा भाग्य बनेगा। भगवान के कार्य में मदद करना ये कितना बड़ा पुण्य है। भगवान नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए आए हैं, और उस नई सृष्टि की स्थापना में जिन आत्माओं ने थोड़ा भी सहयोग दिया, ये लहरी की कहानी सुनिए ना, कहते हैं जब राम ने पुल बांधना शुरू किया लंका पर चढ़ाई के लिए, तो बानर्स को वरदान था, कुछ बानर्स को पत्थर उतारते थे, उस पर राम लिखते थे और वो डाल देते थे सागर में, उतरने लगते थे। तो तैर रहे थे पत्थर, तो गिलहरी को आए, तो तैरते हुए इस पर कैसे राम जी जाएंगे, तो वो बार बार पानी में सागर में जाती, गीली हो जाती, और गीली होकर के बाहर आकर के रेत को ऐसे लपेट लेती अंदर, और फिर दौड़ती और पुल के ऊपर झाड़ देती। तो एक बानर देख रहे थे क्या कर रही छोटी सी गिलहरी, तो उसको आया कि बार बार सागर में जाती है, गिली होती है, रेत उठाती है और फिर आके झाड़ती है। तो उसको पूछा तुम क्या कर रही है, मैं राम के पुल को बनाने में मदद कर रही हूं। तो उसको पकड़ के राम के पास ले गए कि देखो एक छोटी सी गिलहरी को क्या इसको है, क्या करेगी। तो राम ने इतना प्यार दिया, कहते उसको आशीर्वाद दे दिया, ऐसे लकीर हाथ, गिलहरी के ऊपर तीन लकीरें होती ना, ऐसे उंगलियों की लकीरें बन गई। अब गिलहरी को भी अकल है कि राम जब पुल बांध रहे हैं तो हमको मदद करनी चाहिए, और यहां कई हैं जिनको गिलहरी जितनी भी अकल नहीं है। नई दुनिया बनाने का श्रेष्ठ कार्य जो स्वयं भगवान करने के लिए आया है, हम सब किस प्रकार से उसके कार्य में मदद कर रहे हैं। मदद के तरीके अलग अलग हैं, तन है, मन है, धन है, कई प्रकार की विशेषताएं हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी न किसी रूप में इस कार्य में मुझे सहयोगी बनना है। पहले पहचानो किसका कार्य है, क्या कर रहा है भगवान। बड़ा गुप्त रीति से नई दुनिया की स्थापना का कार्य है, इस नरक को स्वर्ग बनाना है, इस कलयुग को सतयुग बनाना है, इन मनुष्य आत्माएं जो इतनी पतित हैं, विकारी हैं, उन्हें परिवर्तन करके सतयुगी देवता बनाना है। बहुत बड़ा महान कार्य है, और उसके लिए भगवान ने इतना बड़ा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के अंदर हमने क्या आहुति दी, हमारी कौन सी चीज आहुति के अंदर पड़ी। अगर हमने भी कुछ कर लिया, किया, तो उसका रिटर्न मिल जाएगा। वो खाता बड़ा गुप्त है, और जिसने गुप्त कर लिया वही नर नारायण बन गया। नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अभी ऐसे थोड़ी अचानक कलयुग के बाद सतयुग में आकर के ऊपर से कोई श्री नारायण या श्री लक्ष्मी उतर आए, कभी तो कर्म किया होगा ना। और दो ही पद निश्चित हैं जिनके बारे में बाबा ने सुना दिया, ये ब्रह्मा बाबा गुप्त पुरुषार्थ करके श्री नारायण का पद पाते, ये मातेश्वरी जी गुप्त पुरुषार्थ करके श्री लक्ष्मी जी का पद पाती। कैसे बनी, क्या किया इन्होंने गुप्त। दो स्लोगन बाबा के पक्के थे, ब्रह्मा बाबा के। जिस दिन से बाबा को पहचाना उस दिन से एक ही संकल्प, जो अच्छे संकल्प हैं, तुरंत दान महापुण्य। ऐसे नहीं कर लेंगे, जो अच्छा संकल्प आए तुरंत करना है, नहीं तो इसके बीच में अगर समय का गैप हो गया तो कहीं ना कहीं व्यर्थ संकल्प की खुद की माया या कोई आकर के उसमें और विघ्न बन जाएगा। आपके पास कोई भी शक्ति है, आप समझते हो भगवान के काम में हम लगा दे, कहीं निष्फल न चली जाए, समय के गैप में निष्फल हो सकती है, ध्यान देना। अगर आप सोचते रहेंगे, एक बार एक भाई ने 3-4 मंजिल का भवन बनाया सेंटर के लिए, ये राजस्थान में, और एक ऊपर अपने लिए कमरा बना लिया और पूरा बिल्डिंग बाबा के लिए है, बहुत मेहनत से अच्छी बिल्डिंग बनाई। हमारे रमेश भाई जी यहाँ रहते थे, उन्होंने बहुत समझाया कि तुम बिल्डिंग बनाई है, तुम इसको रजिस्टर्ड कर दो, लिख ट्रांसफर कर, लिख दो, क्योंकि बहुत पक्के थे इस बात में, लिखत में दो। नहीं, हमारे आगे पीछे कौन है, हमने तो बाबा के लिए बनाई है, तो बाबा की ही बिल्डिंग है, कोई नहीं इस पर अधिकार रखता, हमारा तो कोई है ही नहीं, और आप निश्चिंत रहो ये सफल होगी। और रमेश भाई सब बहुत प्यार से समझाएं कि भाई जी ऐसा है कि कलयुग में कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा, तुम अगर सफल करना है तो इसको ब्रह्मा कुमारी इसको रजिस्टर्ड करो। हाँ दादी कर देंगे, हाँ जी कर देंगे, और अचानक हार्ट फेल हो गया और व्यक्ति चला गया। उसके बाद उसके जो मरे हुए संबंधी थे वो भी जिंदा हो गए, वो मेरे चाचा थे, वो मेरे ताऊ थे, वो मेरे फलाना थे, सब के सब उस जमीन पर अधिकार, क्योंकि रजिस्टर्ड हुई नहीं थे, लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। हमारी दादियां कहती हम तो झगड़ा नहीं करने आए हैं, अगर उसका नहीं सफल होना था नहीं किया जीते जी, चुपचाप बहने वहां से हट जाओ और उससे मकान दे दो उसको, थोड़े दिन में खाली करना पड़ा, दे दिया। क्या सफल हुआ उसका, बनाया, बहुत निश्चय बुद्धि था, पक्का बाबा का बच्चा था, तन मन धन लगाया, लेकिन एक कौड़ी भी सफल नहीं हुआ। इसलिए पुण्य की पूंजी जो साथ जाती है, वो पुण्य की पूंजी जमा करने की विधि आनी चाहिए। बिना विधि से कर रहे हैं हम, कहते हम तो बाबा के लिए तो हैं, लेकिन जो कुछ करो उस पर कोई का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और ऐसे नहीं अपने परिवार को पीछे करके कर दो। एक यहाँ भाई थे मेरे महाराष्ट्र में, जब ज्ञान सरोवर बनने लगा तो मेरी सेवा थी, कोई भी चेक ड्राफ्ट या कोई भी भेजता था तो उसका उत्तर देने की, अभी भी वही सेवा है, कोई भी कुछ यज्ञ में भेजता है तो उसको पत्र दादी की तरफ से मैं लिखता हूँ। तो एक भाई हर 15 दिन में, एक मास में 1-2 लाख का चेक भेजे, बड़ा बड़े दिल वाला, कोई बहुत बड़ा साहूकार होगा। तो ऐसे ही दादी को मैंने कहा, दादी एक भाई का इतना अच्छा सहयोग आ रहा है ज्ञान सरोवर में, ये कौन है? तो दादी कहती एक बूढ़ा दादा है, और वो जब आएगा तो तुम उससे मिलना, बात करना। तो जब वो आया तो मैं मिला, हमने कहा आप तो खूब अच्छा सफल कर रहे हो ज्ञान सरोवर में, बहुत अच्छा पुण्य जमा हो रहा है, लेकिन आपके परिवार वाले सदस्य आपका कोई रुकावट नहीं डालते हैं? कहता भाई जी हमारे पास बहुत जमीन थी और मेरे 3 बेटे थे, मैंने सबका हिस्सा बांट दिया, उसमें 4 हिस्सा किया, लेकिन 1 हिस्सा जो मेरा था, हमने उनको बोला तुमको मैंने सब कुछ दे दिया तुम्हारा हिस्सा, अब मेरे हिस्से पर हाथ नहीं लगाना, और मैं अपने हिस्से में थोड़ा थोड़ा बेच बेच करके बाबा के ज्ञान सरोवर में सफल। उसने इतना सब कुछ सफल किया गुप्त रीति से, ये है महान पुण्य कर्म। बहुत गुप्त रीति से अपना तन मन धन सब कुछ सफल करके फिर बाद में शरीर छोड़ा, ज्ञान सरोवर बनने के बाद चला गया, बुजुर्ग तो था, लेकिन न उसके परिवार वालों ने विरोध किया, न टीचर ने विरोध किया, उसने दिल से खुले दिल से सहयोग किया। तो कई बार हम गुप्त रीति से अगर कोई सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार के करते, तो कहते हैं गुप्त दान महापुण्य। ब्रह्मा बाबा ने गुप्त दान ऐसा किया, बाबा का एक स्लोगन ये था कि इस हाथ से करो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, वर्णन और चिंतन तो बहुत दूर की बात है, वह थोड़ा भी कोई कर लेता है करता है तो वो सुनाना चाहता है, दस को बताता है मैंने इतना किया तूने कितना किया, या मेरा नाम कहाँ हुआ, मेरी महिमा कहाँ हुई। अब दुनिया में तो आदत बनी हुई थी, कोई मंदिर बना, कोई गुरुद्वारा बना, कोई अच्छा धर्म स्थान बना, धर्मशालाएं बनाई, तो वहां पर लोगों ने एक मार्बल का पत्थर भी लगाया तो उस पर लिखाया फलाना फलाना स्वर्गीय पिता के नाम से, दादा के नाम से। अब इतना बड़ा महायज्ञ भगवान ने बनाया, आप पांडव भवन देखते, ज्ञान सरोवर देखते, शांतिवन देखते, और शांतिवन के चारों ओर के बड़े बड़े बिल्डिंग देखो, किसी एक दरवाजे पर एक जगह पर भी किसी का नाम है? सब बाबा का है। दिया तो बाबा के बच्चों ने ही है ना, बाबा कहां से लाएगा? सब बाबा के बच्चों ने बड़ा गुप्त रीति से बाबा के कार्य में मदद की, तो गुप्त दान महापुण्य, और ब्रह्मा बाबा ने इसी तरह से श्री नारायण पद प्राप्त कर लिया। अंत तक कहा बच्चे मैं कुछ नहीं करता हूं, ये मेरे बच्चे करते हैं या मेरा बाबा करा रहा है, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो दलाल हूं। सब कुछ करके अपने आप को छिपा करके रखा, और जो शुद्ध संकल्प आया उसके लिए डिले इज डेंजर, डिले नहीं किया। इसलिए आप सब इस बात पर ध्यान देना, जो शक्ति है जिस पर हम थोड़ा अधिकार अपना समझते हैं, भाई आपकी परिवार की जवाबदारियां अच्छी तरह से संभालो निभाओ, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वो बाबा के कार्य में सफल हो जाए, उसमें कहीं हम पीछे न रह जाएं। लेकिन सफल करने के बाद ये अपेक्षा न रखें कि कम से कम मेरी महिमा तो हो, मुझे स्टेज पर तो बुलाए, मेरा बड़ों से परिचय तो करा दें। अगर कोई ने कच्चा फल खा लिया, नाम मान शान महिमा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्टेज मिल जाती है ऐसे लोगों को, लेकिन बाबा कहता है उसका वहीं खाता माइनस हो जाता है, क्योंकि उसी समय खा लिया, बनना था बहुत बड़ा पद उसका, लेकिन कई ऐसे आत्माएं हैं जो करके और उसकी प्रशंसा जो चाहती हैं वो अपने किए हुए को माइनस कर देती हैं। इसलिए वर्तमान समय जो पुण्य की पूंजी है, दुआएं तो बहुत साथ देती, मदद करती हैं। संगम पर किसी भी प्रकार का पेपर आएगा, अगर आपने दुआएं जमा की हैं, सबको सुख दिया है, समय पर साथ दिया है, जो कोई आवश्यकता के समय सहयोग दिया, बाबा के घर में जब आवश्यकता थी, मैं एक दो बातें आपको सुनाता हूं। जब बेगरी पार्ट चल रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं है यज्ञ में, दोपहर का भोजन क्या बनेगा वो भी पता नहीं है, और बाबा तो बेफिक्र बादशाह, क्लास के बाद भंडारी वाली पूछने आती थी, बाबा भंडारे में तो कुछ नहीं है, दाल चावल आटा सब्जी कुछ नहीं है, क्या दोपहर को बनेगा? बच्ची वेट एंड सी, ठहरो, बच्चों को मैं सैर करा के लाता हूं पहाड़ी पर, मुरली के बाद पहाड़ी पर ले जाना, और यही मौसम जुलाई अगस्त सितंबर का, तो यहाँ जामुन करौंदे बहुत सारे फल, अरे बच्चे देखो भगवान का कितना अच्छा बगीचा है, खाओ खूब अच्छी तरह से, सब फल खा करके अपना जामुन करौंदा खा के आ जाते, 10-11 बजे आते, बच्चे रेस्ट करो थोड़ा, तैयार हो करके भोजन मिलेगा सुबह, 10:30 बजे पोस्ट में पैसा आता था, कहीं ना कहीं से बाबा टच करता और लिफाफे में 500 रुपया 1000 रुपया आ जाता, उसी से सब कुछ आता, और दोपहर को समय पर भोजन की बेल लगती, एक दिन भी भूखा नहीं सुलाया बाबा ने। लेकिन ऐसी आत्माएं जो टच से कैच किया और भेजा, समय पर सहयोग दिया, उनको भगवान की बहुत गुप्त दुआएं मिली, भले उस समय बाबा साकार में रहे तो रिटर्न नहीं कर पाया, लेकिन बाबा जब अव्यक्त हुए तो दो किस्से मैं आपको सुनाता हूं। 73 में एक ग्रुप आया और उसके बहुत सारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बहुत बड़ा परिवार था। कभी कभी बाबा याद करते हैं, शायद आप लोग पुराने जानते हैं, नाम सुना होगा, दादा राम सावित्री। ये सिंधी परिवार था और वो हांगकांग में रहता था। उस समय बिगरी पार्ट के समय कभी लिफाफे में ऐसे पैसे भेजे, और जब वो 73 में पूरे परिवार को लेके माता आई, सावित्री माता, तो यहां पर गुलजार दादी थी। बाबा को ऐसे प्रोग्राम चल नहीं रहा था, दादी और गुलजार दादी थी, दीदी जी कहीं बाहर गए थे, दीदी मनमानी। तो दादी को बोला, दादी हम सबकी तरफ से बाबा को भोग लगाने के लिए गुलजार दादी को बोलो। ठीक है, सुबह सुबह मुरली के बाद, गुरुवार का दिन था, सवेरे गुलजार दादी भोग लगाने के लिए बैठी, वो हिस्ट्री हाल में ही, वही हाल था, ये नहीं तैयार हुआ था। और मुरली के समय भोग लगने लगता था तो सेवा वाले तो उठ जाते, तो गुलजार दादी जब भोग में गई तो भोग लगा करके सीधा ही बाबा आ गए, भोग लगाते हुए बाबा प्रवेश हो गए। और बाबा ने बहुत प्यार से सबको दृष्टि दी और दादी को कहा कि आज जो भी भोग बना है सब यहां ही ले आओ। आज बाबा बच्चों को समय पर आई वेल पर मदद करने वालों के साथ पिकनिक करने आया है, समझा? कहां संदेश था, लगाना था भोग, और बाबा खुद आए और अपने हाथों से एक एक बच्चे को भोजन खिलाया, गिट्टी खिलाई, इतना प्यार किया, इतनी दृष्टि दी, और कहा कि इन बच्चों ने यज्ञ में जब बहुत सहयोग की जरूरत थी, समय पर साथ दिया, समय पर मददगार बने, और यहां तक भी जब हम लोग आए तभी भी कोई इतना धन नहीं था यज्ञ में, कोई सहयोग नहीं था, वो हांगकांग से हम लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे टेरिकॉट के पैंट सूट भेजते थे, और मधुबन वालों को वही कपड़े मिलते थे। वो तो कारण बना अचानक हम लोगों के छूटे हुए कपड़े, लेकिन हांगकांग से ही बहुत अच्छी तरह से पार्सल आते थे, गुप्त रीति से बहुत सहयोगी बने। और ऐसे बच्चों के लिए अब उनके बच्चे लंदन में भी हैं, हांगकांग में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, और सब जगह सेवा केंद्र बनाने के लिए निमित्त बने। ऐसे गुप्त बच्चों को दुआएं मिलती हैं, ये दुआएं हैं। और दुआ जिसको मिलती है ना, उसके आगे शारीरिक प्रॉब्लम आ जाए, मानसिक आ जाए, आर्थिक आ जाए, सब प्रॉब्लम्स को इतना सहज पार करता जैसे सूली कांटा है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। कोई भी बात पूछो, क्या है? हमारी दादियों को जब शारीरिक प्रॉब्लम आई तो हम दादी से कभी पूछते, दादी कोई तकलीफ है, दर्द होता है? अरे नहीं नहीं, बाबा की दुआएं हैं, मैं बीमार थोड़ी हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सबकी दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं, और उसके कारण उनको कभी उसमें बीमारी में कष्ट की, दर्द की महसूसता नहीं। बहुत सहज रीति से हंसते हंसते उसको पार कर लिया। हम सब इस बात पर ध्यान दें, स्व उन्नति के लिए पुरुषार्थ गुप्त करके प्रारब्ध बना लो, समय पर सहयोगी बन करके, एक दूसरे को मदद करके, सुख दे करके, सहयोग दे करके दुआएं जमा कर लो, और अपनी गुप्त तपस्या से, गुप्त सहयोग से, गुप्त दान से पतित आत्माओं को पावन बना करके बाबा के कार्य में किसी तरह से भी जो शक्ति है उसे सहयोगी बन करके पुण्य की पूंजी जमा करो। वो पुण्य की पूंजी साथ साथ चलती है। कहते बड़ा पुण्य लेके आया, अचानक कोई बच्चे का जन्म ऐसे परिवार में होता है जो बहुत धनाढ्य परिवार होता है, बच्चा आता है, आते ही कहते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ, मुख में आते ही उसको सोने का चम्मच मिलता है। कहते बड़ा पुण्य आत्मा है, कितना पुण्य करके आया है, कोई मेहनत नहीं है, ऐसे घर में जन्म मिल गया। तो बाबा भी कहता है, बच्चे इस समय इतने पुण्य जमा करो जो सतयुगी दुनिया में आपको अच्छे से अच्छा पद मिल जाए। हमारे हाथ में संगम युग पर सबके लिए खुला भंडार है, जो करना चाहो कर लो, और ध्यान देना अब नहीं तो कभी नहीं, जो समय है अभी भी बाबा कहते टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। चलो वो एक तरफ लगा जो हमारा बाबा से मिलना दादियों की पालना, कई चीजों से अभी आने वाले तो पीछे है ना, लेकिन अगर गुप्त रीति से हर संकल्प, श्वास, समय, संपत्ति, जो खजाने हमारे पास है, हम सफल करें तो लास्ट आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं। इसलिए उनके लिए अभी टू लेट इस बात में नहीं है, बहुत गुप्त पुरुषार्थ करने का समय बचा है। ऐसा समय आएगा, जैसे कोविड में ट्रायल कर लिया हम सब ने, न सेंटर पर जा सकते, न बाहर जा सकते, न मधुबन जा सकते, ट्रायल कराई बाबा ने, लेकिन अचानक ऐसा ही कुछ हो गया, तो क्या हम इतनी श्रेष्ठ स्थिति बना लिए हैं जो हमारा बहुत गुप्त पुरुषार्थ। बच्चे ऐसे बाबा कहता, शरीर छोटे जैसे मक्खन से बाल निकल गया, जरा भी कोई कष्ट नहीं, तकलीफ नहीं, बाबा अपनी पलकों पर बिठा करके उड़ा के ले जाए। तो हम सब इतने डबल लाइट बने, जो शक्ति है, जो समय है, जो श्वास है, हम सब अपना सब कुछ सफल करें, लेकिन उसका वर्णन और चिंतन नहीं, दिखावा नहीं। कहीं करते बहुत थोड़ा, दिखाते बहुत हैं, वर्णन बहुत कर लेते हैं, और कई इतना करते हैं जो कभी आगे नहीं आते, कहते हमारा नाम नहीं लेना, पता नहीं चलना चाहिए। गुप्त रीति से बाबा के कार्य में सदा सहयोगी बनते हैं, ऐसे थोड़ी इतना बड़ा भवन सब बन जाता है। दादी के पास एक बार अखबार वाले आए, ज्ञान सरोवर बन गया था, दादी ये ज्ञान सरोवर में कितना पैसा खर्च हुआ? दादी बड़े प्यार से उनको मुस्कुराते कहते, अरे भाई एक रुपए में ज्ञान सरोवर बना है। फिर एक रुपए में ज्ञान सरोवर बन गया? हाँ, हमारे बाबा के 3.5 लाख बच्चे हैं रोज, उस समय 3.5 लाख भी तो 14 लाख है, ये 92 की बात सुना रहा हूं मैं। एक एक रुपए के सहयोग से ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ है, और सब बाबा के बच्चों ने कैसे लगन से उस समय पैसे भेजे होंगे गुप्त रीति। एक ही पत्र दादी का गया था, लेकिन सबका सहयोग आया और ये ज्ञान सरोवर बन के तैयार हो गया। दादी इतना बेफिक्र रहती थी, कहती थी बाबा बैठा है, हुंडी सकारने वाला वो बैठा है, मैं क्यों फिक्र करूं, बनाना है बाबा करवाएगा, संकल्प दिया है हो जाएगा। और सचमुच सिद्धि स्वरूप आत्माएं थी दादियां, ऐसी सिद्धि स्वरूप थी। एक दिन की बात सुनाता हूँ मैं, अचानक गया, दादी नाश्ता कर रही थी, मैं अचानक गया दादी के पास, उसे रोज ही जाता था, लेकिन नाश्ते पर बैठा तो पहले तो अपने नाश्ते में से कुछ निकाल के खिलाएंगे, ये खाओ ये खाओ, फिर बाद में कहती है, राजू आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है। सुनाया ना खुजली की कहानी दादी की, तो मैंने भी ऐसे हाथ पकड़ा, मैं दादी कहाँ होते, बोला यहाँ होती, ऐसे ऐसे किया, तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे चलाया, हमने कहा दादी दूसरे हाथ में नहीं होती, बोले नहीं। हमने कहा इस हाथ में होती तो क्या होता है, बोले पैसा आता है, पैसा आता है, बच्चों जैसा पैसा आता है। तो हमने कहा तो दादी अच्छा है, दूसरे हाथ में भी होगी तो डबल आ जाए। नहीं नहीं इसमें होती है तो लेफ्ट हाथ जैसे करे। 5-10 मिनट रू रिहान ऐसे किया, ऐसे रमणीकता थी, बहुत मूड में बैठी थी, खुश में खुशी में, थोड़ा नाश्ता करके और थोड़ी बातें हमारी तो रोज होती थी, पत्र व्यवहार मुरली के बारे में। तो वहां से निकल के मैं बाहर आया और कोई भाई मिला तो 10 मिनट में खड़े खड़े के जैसे बात करा। इतने में दादी कहते उसको बुला लो, उसको बुला लो। मुझे बुलाने एक भाई आया कि चलो दादी बुला रहे। नहीं दादी से मैं सब काम करके आया। नहीं नहीं जरूरी है, चलो वापस। अब मैं गया तो दादी के सामने इतना नोटों का गड्डी रखा था। कहती है देख तेरे को बोला था ना खुजली हो रही, ये आ गया। मैंने कहा कहां से आ गया? तो मैं ऐसे देखने लगा, हमने शायद भगवान छप्पर फाड़ के देता है तो ऊपर कोई छत से दिया होगा, कोई सामने तो कोई था ही नहीं, और नोट उतने ही रखे थे, ऐसा बंडल था बड़ा। कहती है जिसने दिया ना उसको मैंने कहा तुम जाके बाबा कमरे में बैठ जाओ, दादी के कमरे, बाबा कमरा साथ में था, वो बैठा है चुपचाप, देखो। देख लिया मैंने झांक करके, बाद में बात करना, अभी कुछ नहीं बोलो, ये पैसा आया ले जाओ जमा करके आओ। मैं ले आया उठा करके, अकाउंट ऑफिस में जमा किया। फिर मैंने दादी को दूसरे दिन, दादी ऐसे कैसे आया पैसा, आपके कौन से संकल्प थे जो पैसा आ गया? कहती है कल से लेकर के ये मनमोहिनी वन वाले दिमाग खा रहे, 5 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, और अकाउंट वाले कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैंने आज सवेरे बाबा को बोला, बाबा बनवाना है तो आप जानो, मैं कहां से लाऊं, मैं तो नहीं मांगूंगी किसी से। तो सवेरे से बस यही था, बाबा कहीं ना कहीं भिजवाएगा, और वो तुम आया तो मैंने बोल दिया खुजली हो रही है, आएगा पैसा, लेकिन तुम पूछना उस भाई से क्यों दिया। 5 लाख बाबा को बोला और 5 ही आया, आगे पीछे नहीं था, उतनी गद्दी थी। तो भाई जब मिला मेरे को, मैंने बोला भाई तुमको कैसे टचिंग आई, दादी ने कहा था क्या? नहीं नहीं, दादी ने नहीं कहा था, मेरी एक जमीन बिकी हुई थी, कोई पैसा नहीं दे रहा था, आज सामने से उसने बुलाया कि मेरे पास पैसा आ गया है, आप ले जाओ, मिला। और मैंने कहा मैं अभी क्या करूंगा, बाबा के घर में जरूरत है समय मनमोहिनी वन की, मैंने दादी को दे दिया, बस इतना ही, 10 मिनट का खेल। इधर दादी संकल्प कर रही है, उधर उसको पैसा मिल रहा है और लेके आ गया। ये क्या था? ये संकल्प की सिद्धि थी, और पवित्र संकल्प, सच्चे संकल्प, कोई स्वार्थ था नहीं, अपना क्या है, बाबा के बच्चे आएंगे उनके लिए इतना अच्छा स्थान बनेगा, निस्वार्थ भाव से बाबा से रूह रिहान की, और भोलानाथ ने हुंडी सकारी। तो ऐसा बाबा से सच्चे होकर के रहो, बड़े दिल से बाबा, बाबा का कार्य है ये, भगवान का कार्य इंसान का थोड़ी है, और वो सब करण करावन हार करा रहा है, हम सब अपना भाग्य बनाने के लिए केवल हाथ आगे बढ़ा दें बस। हमको कोई कहता आप ये करते हो, वो कर, मैं कुछ नहीं करता हूँ, उसका कार्य है, हम तो अनपढ़ हैं, लेकिन आज सारे विश्व को पढ़ाने की जवाबदारी दे दी, ये भेजो, ये भेजो, ये भेजो, कौन करा रहा है? करण करावन हार स्वामी है, बाबा गुप्त रीति से किसी भी बच्चे से करा लेगा, लेकिन उसका सपूत आज्ञाकारी चाहिए। हाँ जी तो करे, कराएगा अपने आप, मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मेरे से नहीं हो सकता, पहले से ही निराशा उदासा वाला संकल्प अगर किया तो बाबा कहेंगे इसको छोड़ो, दूसरे से करा लो। तो अगर आप सब अपना भाग्य गुप्त बना करके पुण्य की पूंजी जमा करनी है, तो ऐसे जो शक्ति है, ऐसे नहीं ये शक्ति कोई उधार के लेकर के करना, आपके पास जो शक्तियां हैं, जिस तरह की शक्ति है, वो भगवान के कार्य में, ईश्वरीय सेवा में सफल करो बस। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कोई कहे, कह करके नहीं कराना, करना है। आप कर सकते हो तो जहां समझते हो जरूरत है, आवश्यकता है, अपना गुप्त रीति से सहयोग दे करके अपना भाग्य बनाओ, अपने पुण्य की पूंजी जमा करो, और ये पूंजी आपको आधा कल्प के लिए साहूकार बना देगी। राजाई पद की पुरुषार्थ अलग है, लेकिन साहूकार पद तो मिल जाए। तो संगम युग पर जो ऐसे हैं बाबा के गुप्त बच्चे मदद करते हैं, वो साहूकार जरूर सतयुग में बनेंगे। इसलिए पुण्य की पूंजी साथ जाएगी, और ये खूब अच्छी तरह से जमा करो। धन है, बुद्धि है, अच्छा भाषण करना आता है, अच्छी वाणी है, ज्ञान रतन बुद्धि में है, कम से कम इनका दान तो करो। स्थूल धरी थोड़ी दान करना है, कोई आता है उसको बाबा की कुछ मीठी मीठी बातें सुना दो, किसी अंधे को रास्ता दिखा देना, भटकते हुए को मंजिल दिखा देना, क्या ये पुण्य नहीं है? कोई भटक गया है, कोई गिर रहा है, उसको सहारा दे देना, उसको आगे बढ़ा देना, पुण्य की बहुत सारी विधियां हैं। तो जिस तरह से सहयोगी बन सकते हो, सहयोग दे करके पुण्य का खाता जमा करके इतना निश्चिंत हो जाओ, बाबा जब आप कहो हम आपके पास आने के लिए तैयार हैं, एवर रेडी। एवर रेडी वही है जिसने अपना तन मन धन समय सब कुछ सफल करके निश्चिंत है, कल कुछ भी हो कि नहीं याद रहे, ये तो तिजोरी में रह गया, ये तो जमीन के अंदर रह गया, ये तो छिपा हुआ रह गया, बुद्धि वहीं भटक जाएगी। इसलिए जो कुछ है जीते जी सफल करके निश्चिंत हो करके तैयार हो जाओ, बाबा कहे आओ बच्चे, बाबा अच्छी बाबा, ठीक है। तो ऐसी सब प्रकार की पूंजी जमा करो, ओके। कि ओम शांति। 7 बजा है अभी, हम सब 7:30 बजे तक, आधा घंटे उसके बाद सौगात है, 7:30 तक बैठेंगे ना सभी। अपने अपने ब्रकुटी आसन पर बैठो। अकाल तख्त बाबा ने दिया है, साढ़े सात तक फिर हिलना नहीं, तभी मजा आएगा योग में। बाबा ने हम सबको 3 प्रकार की ड्रिल सिखाई है, 1 साकारी, 2 आकारी, 3 निराकारी। साकारी याद में हम संगम युग के भाग्य की, क्या मेरा श्रेष्ठ भाग्य है उसका चिंतन करते हैं। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह संगम युगी, मुझ आत्मा का श्रेष्ठ भाग्य, भाग्य विधाता ने हम सब के हाथों में कलम दे दी भाग्य की रेखा खींचने की। हम जितना लंबा जितने समय का भाग्य बनाना चाहें हमारे हाथों में है। ऐसी श्रेष्ठ पवित्र जीवन जो इस कलयुग में भी इस दुख धाम में हम सब बच्चों को बाबा ने उस किनारे कर लिया, दुख धाम से निकाल लिया। हम संगम पर बैठे हैं, दुख की लहर भी नहीं आ सकती। ऐसी श्रेष्ठ पवित्र जीवन उस जीवन दाता बाबा ने दी है, प्राण दान दिया है, जीव दान दिया है। हम सब प्यार से दिल से बाबा का शुक्रिया करते हैं। जैसे कोई किसी के प्यार में खो जाता है, उसके नैन गीले हो जाते हैं, बाबा ने हम सबको कलयुगी की चट से निकाला है। क्या खान पान था, क्या रहन सहन था, कैसी जीवन थी, बाबा ने ज्ञान रत्नों से संपन्न बनाकर ज्ञान गुण शक्तियां सब कुछ समर्पित कर दी। इतना गुणवान संपत्तिवान शक्तिवान बनाया। ऐसे प्यारे बाबा को दिल से प्यार कर, निराकार स्वरूप में बाबा ने जब साकार तन लिया, अपना मुख वंशावली बच्चा बनाया, माता पिता के रूप में पालना दी, शिक्षक के रूप में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया, सतगुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वरदानों से हमारी पालना हो रही है। ये मेरा श्रेष्ठ भाग्य जो भाग्य विधाता वरदाता दोनों की छत्र छाया के नीचे चल रहा हूं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का चिंतन उसी नशे और खुशी में बैठो। स्वयं का दर्शन करो, मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं, अब अपने रियल स्वरूप को रियलाइज करो। पांचों स्वरूपों का चिंतन करके स्वदर्शन चक्र घुमाओ, मुझात्मा का अनादि स्वरूप कितना चमकता हुआ पवित्र स्वरूप है। अपने चमकते हुए दिव्य सितारे को देखो, आत्मा संपूर्ण पावन है, हर बंधन से मुक्त है। परमात्मा के बिल्कुल समीप सर्वशक्तियों से संपन्न संपूर्ण आत्मा जब इस सृष्टि चक्र में पाठ बजाने के लिए आई है, तो प्रकृति सत्व प्रधान है, हर प्रकार के सुख साधन सुविधाएं हैं। आत्मा अपने योग बल से उस स्वर्णिम काल में स्वर्णिम युग में प्रवेश करती है। शरीर और आत्मा दोनों ही पावन है। संबंधों में सच्चा सुख है, आंतरिक प्यार है, ये स्वर्णिम काल जहां कर्म अकर्म हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। सत्ययुग त्रेता में पाठ बजाते वो पूज्य आत्मा द्वापर युग में पुजारी बनती है, अपने ही मंदिर बनाकर अपने स्वरूप की पूजा करती है। अपने पूज्य स्वरूप को निहारो, कितनी भक्त आत्माएं एक क्षण के दर्शन के प्यासी हैं। जड़ मूर्ति का भी दर्शन करके प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्ति काल का पूज्य स्वरूप दातापन का स्वरूप रहा है। जो भी आत्मा सामने आई उसे कुछ न कुछ जरूर दिया है, काल में पाठ बजाती बजाती भक्ति का फल देने वाला स्वयं भगवान अपना बन गया। ब्रह्मामुख से हम सबको नया जन्म दिया। पवित्र और स्वच्छ बनाकर संपूर्ण सच्चा ब्राह्मण बनाया। हर गुण हर शक्ति से श्रृंगार किया। अपने समान गुणवान बना दिया। श्रेष्ठ लक्ष्य दिया, आप ब्राह्मण आत्माएं हैं, संपूर्ण फरिश्ता हो, तुम्हारा स्पर्श से शरीर से भी कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हें काकारी रूपधारी डबल लाइट फरिश्ता हो। अपने इसी स्वरूप से तुम्हें पूरे विश्व की सेवा करनी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देनी है, इस वायुमंडल में भटकती हुई आत्माओं सही रास्ता दिखाना है, विश्व परिवर्तन के कार्य भी सहयोगी बनकर संपूर्ण पावन बनना है। संगम युग की पवित्रता ही सबसे बड़ा जीवदान है। अपने पवित्र स्वरूप में स्थित होकर पवित्रता की किरणें चारों ओर फैलाने की सेवा। उस परम ज्योति प्राणों से प्यारी शिव परमात्मा की दिव्य शक्तियां मैं आत्मा स्वयं में धारण कर रही हूं। इन शक्तियों को चारों ओर इस वायुमंडल में फैलता हुआ अनुभव करो। सभी अपने प्राण प्रिय शिव बाबा को इस साकार वतन में इस महफिल में आवाहन करो। प्यारे बाबा, ये मेरे अकाल तक बिल्कुल पवित्र है, स्वच्छ है, कुछ पल के लिए मेरे साथ आप कंबाइंड हो जाओ, मैं आपकी दिव्य शक्तियों का अनुभव करना चाहता हूं। इस भ्रकुटी आसन पर दो सितारे चमक रहे हैं। मैं आत्मा भी परमात्म संग में रंगी हुई उनके समान संपूर्ण पावन हूं। सभी कंबाइंड होकर उनके सानिध्य का अनुभव करो। शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, सर्व शक्तियों के भंडार है। मैं आत्मा उन्हीं गुणों से संपन्न हूं।
हम एक हाथ की ताली से भाई जी का धन्यवाद करेंगे।